नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त होगा। मतदान शनिवार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति की आलोचना की। भारत का निर्यात बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। मई में रोजगार 18 वर्ष के उच्चतम स्तर पर। भगवान गौतम बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा देश विदेश में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। पीवी सिंधु और अश्मिता चलिहा मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची और सचिन साजिराव ने जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोला फेंक स्पर्धा में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 8 राज्यों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में शनिवार 25 मई को मतदान होगा। इनमें बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10 सीट, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7 सीट, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 8 सीट शामिल हैं। इन 58 लोकसभा सीटों पर कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज पंजाब के पटियाला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शाम करीब 4 बजे रैली स्थल पर पहुंचने का कार्यक्रम है। रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री कल गुरदासपुर और जालंधर में रैलियों को संबोधित करेंगे। इधर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में रोड शो के माध्यम से मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के स्थानीय नेता भी प्रचार में व्यस्त हैं। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। दिल्ली में कल एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2010 के बाद से राज्य में जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने पर पश्चिम बंगाल सरकार को घेरा।
कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार तुष्टीकरण की सनक हर हर पार कर रही है।
दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। राजनीतिक दल रोड शो, जनसभाएं और घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में मतदान शनिवार 25 मई को होगा। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के द्वारिका में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत राम राज्य के उत्थान का निश्चित रूप से साक्षी बनेगा और कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती।
एक संकेत पूरी तरह से साफ है मेरे बहनों भाइयों, रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर ही रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता पीयूष गोयल ने पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में एक रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा की नेता स्मृति ईरानी ने भी चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र के अशोक विहार में एक रोड शो किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता भजनलाल शर्मा ने उत्तर पश्चिम दिल्ली में रोहिणी में एक रोड शो किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में दिलशाद गार्डन में एक जनसभा की। उन्होंने गरीबी और असमानता को स्थायी समस्या बनाने के लिए भाजपा नेतृत्व की निंदा की।
हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान का आम आदमी, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, ये सब मिलकर इस देश को चलाएं।
ओडिशा में लोकसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव प्रचार आज शाम संपन्न हो रहा है। राज्य में आम चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में संबलपुर, केंदुझर, ढेंकनाल, पुरी, भुवनेश्वर और कटक लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 42 विधानसभा क्षेत्रों में भी 25 मई को मतदान होगा। इस चरण में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेन्द्र प्रधान, भाजपा नेता भृतहरि मेहताब, अपराजिता सारंगी, संबित पात्रा, बीजू जनता दल के महासचिव प्रणब प्रकाश दास सहित कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा आज ओडिशा में भाजपा उम्मीदवारों के लिए सभाएं कर रहे हैं। उन्होंने सभी मोर्चों पर राज्य के पिछड़ेपन के लिए बीजू जनता दल के नेतृत्व वाली नवीन पटनायक सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और मतदाताओं से भाजपा को ओडिशा में पहली बार सरकार बनाने का मौका देने की अपील की है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों के परिचय की श्रृंखला में आज हम आपको वाराणसी लोकसभा क्षेत्र की जानकारी दे रहे हैं।
धर्म और आध्यात्म की राजधानी माने जाने वाली वाराणसी संसदीय सीट 2014 के बाद से ही पूरी तरह से राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बनी हुई है। इस सीट पर अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में 7 बार कांग्रेस और 7 बार भाजपा ने जीत हासिल की है। सपा और बसपा यहां आज तक नहीं जीत सकी है। इस लोकसभा सीट से लगातार 2 बार से भाजपा के नरेंद्र मोदी जीतकर देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी एक बार फिर बतौर भाजपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अतहर जमाल लारी चुनाव लड़ रहे हैं। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए प्रचार तेज कर दिया है। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इनमें रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और सेवापुरी शामिल हैं। वाराणसी लोकसभा सीट पर कुल 19,39,255 मतदाता 1 जून को 7 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की श्रृंखला में आज हम हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट की भी जानकारी दे रहे हैं।
करनाल लोकसभा सीट पिछले 2 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा का मुख्यमंत्री बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चुनाव मैदान में उतारा है। इस बार यह सीट इसलिए भी दिलचस्पी का केंद्र बनी हुई है क्योंकि इंडी गठबंधन में शामिल 2 दलों के प्रत्याशी, कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वीरेंद्र मराठा आमने सामने हैं। जननायक जनता पार्टी ने देवेंद्र कादियान को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। इस लोकसभा सीट से 19 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 9 निर्दलीय हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार के बीच माना जा रहा है। करनाल संसदीय क्षेत्र में कुल 9 विधानसभा सीटें नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, गरौंडा, असंद, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहर, विसराना और सुमालखा शामिल हैं। इस संसदीय सीट पर 21,09,702 मतदाता 25 मई को 19 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsoneair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार और 2019 में लाभार्थी का मुद्दा प्रमुख था। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के चुनाव में मुख्य मुद्दा विकसित भारत का है। एक अंग्रेजी समाचार पत्र से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि देश की जनता इस चुनाव को महत्वपूर्ण मानती है क्योंकि ये चुनाव देश की आकांक्षाओं की गति से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए है। श्री मोदी ने दावा किया कि इस वर्ष भी एनडीए को उन मतदाताओं का समर्थन मिलेगा जिन्होंने पिछले दो लोकसभा चुनाव में समर्थन दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार विरोधी और लाभार्थी मतदाता उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि भारत की तीव्र प्रगति के इच्छुक वर्ग भी उन्हें और भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी फैक्टर पर नहीं बल्कि आम आदमी के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। इन मुद्दों में महंगाई और बेरोजगारी शामिल है। श्री केजरीवाल ने एक हिंदी दैनिक से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी से स्पष्ट है कि इस पार्टी के अन्य नेताओं को भी धन का लाभ मिला है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि न्यायालय की तीन टिप्पणियां भ्रष्टाचार की ओर संकेत करती हैं। श्रीमती ईरानी ने कहा कि न्यायालय ने माना है कि सिसोदिया ने 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है और जमानत दिए जाने पर वे गवाहों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूले। चुनाव का पर्व देश का गर्व।
ये आकाशवाणी है। देश में पिछले 18 वर्षों के मुकाबले इस वर्ष मई में रोजगार और निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। HSBC फ्लैश क्रय प्रबंधक सूचकांक के अनुसार भारत जुलाई 2010 से निजी क्षेत्र के उत्पादन में तीसरी सबसे अधिक वृद्धि वाला देश बन गया है। बिक्री और उत्पादन दोनों मामलों में विनिर्माण क्षेत्र लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन समग्र आर्थिक सशक्तिकरण का मुख्य कारण सेवा क्षेत्र का मजबूत होना है। HSBC के भारत के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा कि दोनों क्षेत्रों के लिए निर्यात में वृद्धि हुई है। भगवान गौतम बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा देश और विदेश में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। बिहार में भी बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती पर मुख्य कार्यक्रम बोधगया में आयोजित किया गया है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और थाईलैंड की महावाणिज्य दूत सुश्री सिरिपॉन तंतीपान्या थेप भी बोधगया के इस उत्सव में भागीदारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के सचिन साजेराव ने पुरुष शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीत लिया है। एक अन्य भारतीय धर्मवीर ने कल पुरुष क्लब थ्रो में कांस्य जीता। प्रतियोगिता में भारत ने 5 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत की पीवी सिंधु और अश्मिता चालीहा मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की यू जिन सिम को और अश्मिता ने अमरीका की बिवेन झांग को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त होगा। मतदान शनिवार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति की आलोचना की। भारत का निर्यात बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। मई में रोजगार 18 वर्ष के उच्चतम स्तर पर। भगवान गौतम बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा देश विदेश में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। पीवी सिंधु और अश्मिता चलिहा मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची और सचिन साजिराव ने जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोला फेंक स्पर्धा में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।